मुस्तफ़ा हमारे साथ होंगे ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ शामिल होंगे फ्रॉम लाहौर और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की आज की पॉलिटिक्स का। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। टॉप ऑफ द आवर विल कम बैक।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
Boost your business's bottom line by adopting new digital strategies and technologies. Get access to expert advice and apply for up to $15,000 in grants at canada.ca/digital-adoption. A message from the Government of Canada.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नू कॉल करो 416-655-2000।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747-4711।
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So, how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/covid-vaccine. A message from the Government of Canada.
बैंक अल्फला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहे पैसे डालें और जब चाहे पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अल्फला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
इस स्प्रिंग दे मौसम दे विच तुसी अपने बैकयार्ड दे विच सब्जियां भाजियां लाउणियां चाहुंदे हो, फुल बूटे लाउणे चाहुंदे हो, क्योंकि हुण आ गया है लोज़ एंड रोना ते स्पेशल स्प्रिंग फेस्टिवल। तुसी लोज़ एंड रोना दे स्टोरां ते जाओ, 30% डिस्काउंट पाओ। मार्कम, स्कारबरो, ब्रैम्पटन दे किसी भी स्टोर दे विच तुसी जा सकदे हो, 30% डिस्काउंट ले सकदे हो। हरेक वीरवार नूं, थर्सडे नूं नवीं सेलां लाईआं जांदीआं ने। अज ही अपने लोज़ दे जां रोना दे स्टोरां विच जाओ ते अपने घरे बहार अपने घर लैओ।
ट्रकिंग कंपनियां लई विंडसर शहर च अपना ट्रक टर्मिनल खोलन दा सुनहरी मौका। 2024 च बन जा रहे नवे विंडसर डिट्रॉयट ब्रिज तो 20 मिनट दी दूरी ते हाईवे 401 दे बिल्कुल नेड़े ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाले लॉट अवेलेबल ने। तेजी नाल तरक्की कर रहे इस इलाके च आउण वाले समय च काफी सारे वड्डे प्रोजेक्ट आ रहे ने ते हो सकदा तुहानू बाद च ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाली इहो जिही जमीन वाजिब कीमतां ते ना मिले। मौके दा फायदा उठाओ ते हुणे कॉल करो चरणजीत बराड़ 6473008436-647-3084436।
जी सर, प्रोग्राम में एक बार खुश आमदीद। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने अपना जलसा किया जिसमें मुख्तलिफ आदाद व शुमार हमारे साथ शेयर किए गए हैं, जो कि 28,000 से लेकर 10 लाख के दरमियान है। ये ग्राउंड जहाँ पर लोगों को जमा होना था, इसकी एक कैपेसिटी जो है, मगर जब जलसे की फुटेज देखते हैं तो ताहद निगाह लोगों का एक जम गफीर नज़र आता है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने ट्रेवल किया आप देख सकते हैं। मगर ज़ाहिर है हर जगह की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से कितने लोग ज़्यादा थे। हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तमाम लोग अपने पास सेलफोन रखे हुए होते हैं और यकीनन جو ٹاورز ہیں وہ آپ کو صحیح اعداد و شمار دے سکتے ہیں, مگر ہماری ہر چیز مبہم ہے. مگر اس جلسے میں ایک پاکستان میں دو چینجز اس وقت آئے ہیں. ایک تو جب یہ جلسہ ہوا تو پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے اپنی جیب سے ایک خط لہرایا, اسی خط کو بیس کرتے ہوئے جنرل صاحب سے ملاقات کے بعد آج 4:45 سے لے کے 5:10 تک میں وہ کور کروں گی کہ بھٹو صاحب جب تھے تو ان کو بھی ایک خط ملا تھا اور یہ کوئی انہوں نے بھی وہ خط دکھایا تھا, مگر آج ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ وہ انٹرویو بھی شیئر کریں گے. پہلا انٹرویو جو میں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا ہے, یہ امریکن امبیسی کے جو ڈپٹی چیف تھے ان کا میں نام بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جا رہی ہوں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا 2010 میں, ٹھیک ہے, اس وقت کے امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرلڈ فیوریسٹن جو تھے انہوں نے انٹرویو دیا تھا. میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ انٹرویو. اس انٹرویو میں یہ بالکل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 10 اگست 1976 کو لاہور میں اس میٹنگ کے اینی شاہد تھے جو جیرلڈ فیوریسٹن تھے, اور اس میں بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر وہاں پہ اس ملاقات میں موجود تھے, اور بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ایٹامک پروگرام ختم کر دیں, جب بھٹو صاحب نے بڑے کلیئر ورڈز میں اس کو مسترد کر دیا تھا. یہاں پر میں ایک اور بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے, ایک اور امریکن ہیں جو کہ میں نے بالکل ان کا نکالا ہوا ہے, یہ ایکس یو ایس اٹارنی جنرل رامزے کلارک. میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کیا ہے, آپ گوگل کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیو یارک میں 93 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. رامزے کلارک فارمر اٹارنی جنرل ہو وینٹ ٹو پاکستان, 1976 میں یہ پاکستان گئے تھے اور یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا کیس لڑنا چاہتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب تھے رجیم, انہوں نے کوٹ ان کوٹس میں جناب یو ایس اٹارنی جنرل ہو وینٹ ٹو پاکستان ان 1976 ٹو ڈیفینڈ انڈر ٹرائل ذوالفقار علی بھٹو بٹ واز پریونٹیڈ بائی دا پریزیڈنٹ ضیاء الحق رجیم فرام اپیئرنگ ان دا سپریم کورٹ, انہوں نے ان کو اپیئر ہونے سے منع کر دیا تھا. تو بھٹو صاحب کو یقیناً انٹرنیشنل پریشر تو ہیں نا, اب آج اس کے لیے تو بائیڈن صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں, بائیڈن صاحب کہتے ہیں میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, مگر وائٹ ہاؤس اور وزیر خارجہ جو اینتھلی بلنکن ہیں وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نو امریکہ ڈزنٹ مین ٹو چینج دا رشین رجیم. باقاعدہ آپ ہر جگہ پہ اس نیوز کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں, پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ ایک لیٹر بھی دکھایا, کہا گیا یورپین یونین نے شاید کوئی لیٹر ان کو لکھا ہے, مگر کیا لیٹر ہے. دیر آر فیو تھنگز, ہم جیسے اپنے گھروں میں بھی پالیٹکس اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, اگر وہ میرے جیسے نالائق انسان کے ہاتھ میں اسرا آئے گا تو ساروں کا ساری چھیل کے رکھے گا نا, تو مطلب دیر آر کیو ڈپلومیٹک چیزیں جو ڈپلومیٹک انکلوئر میں ہی رہنی چاہیے, اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جناب غلام مصطفیٰ صاحب. اس دوران اگر آپ کی کوئی کال ہوگی وی ول ویلکم یور کال 416-620-1778. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام, میں خیریت ہوں, آپ کیسے ہیں؟
لوکنگ گریٹ ایز یوزول,
تھینک یو ویری مچ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے, امین سم امین. سر پاکستان کی اگر میں صورتحال کو ڈسکس کرتی ہوں, اور یہ جلسہ تو ہو گیا مگر پاکستان میں بڑا چینج بھی آیا جس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب, کیا ان کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ یہ تمام ذمہ داریاں اپنے نام کر سکیں یا ان کو ادا کر سکیں؟
دیکھیے اپیرنٹلی تو وہی لوکس آل رائٹ کافی ایکٹیو بھی ہیں, وہ پالیٹکس میں دائیں بائیں بھی پھرتے رہے ہیں کافی پچھلے دنوں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, تو امید تو کرنی چاہیے اگلے سال ڈیڑھ سال جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بحسن طریقے سے نبھا سکیں.
آمین.
وہ 5 سال میں ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, آئی سین ویری کلوزلی, اور بڑے افیکٹو چیف منسٹر ہیں, بڑی ملائم تباہ ہیں اور بات نہیں سخت نہیں کرتے لیکن اپنی بات منوانا جانتے ہیں اور کام لینا جانتے ہیں. ان کے دور میں काफी अच्छे काम हुआ था पंजाब में. पंजाब वाज ए प्रोग्रेसिव डेवलपिंग प्रोविंस एट दैट टाइम.
मैंने तो पीपल के जिक्र किया है, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी कपल ऑफ परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसी चीजें की थी जो कि मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तानी भी उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते. एक तो ये था कि बिकॉज दे ऑल यूज पीआईए सर्विसेज, तो अगर किसी की मौत हो जाती है तो जब वो पाकिस्तान जाता है तो वो किस तरह जाता है. कुछ और चीजें भी थी, दो तीन चीजें बड़ी कमाल की उन्होंने अपने दौर में की थी. एक तो आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा जलसा किया. अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज को कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं. ये तादाद 28,000 से लेके 10,00,000 में है, जाहिर है वहां पे ग्राउंड की एक कैपेसिटी है. मेरा उससे कंसर्न नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर ने दो चेंजेस आ गए. पहला चेंज तो आया कि वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब हो गए. उन्होंने एक लेटर दिखाया, उन्होंने कहा कि बाहर से क्या प्रेशर है. इस लेटर का भी आप तذکرہ करें, जबकि जनाब बाइडन साहब जब ब्रसल्स में मौजूद थे और नेटो के ममालिक से मुलाकात करने के लिए और पोलैंड में तशरीफ लेके जाते हैं, तो उन्होंने जो बयान दिया जिसका पिछले तीन दिन से वजाहतें दे रहा है व्हाइट हाउस, कि नहीं नहीं उनका मकसद रजीम को चेंज करना दिया, जिसमें ने कहा था फॉर गॉड सेक पुटिन हैज टू गो. तो आप क्या फरमाएंगे यहां पे उस लेटर के बारे में, और भुट्टो साहब के बारे में? तो आज मैं प्रूफ्स के साथ आई हूं कि भुट्टो साहब को भी लेटर ऐसा आया था.
देखिए ये आज के दौर में इसी लेटर का लिखे जाना ज्यादा खुद एक अचंभे की बात लगती है जाहिर, क्योंकि मैसेजिंग इस किस्म की अगर आप लिख के भेज रहे हैं तो उसके चंद एक मकासद हो सकते हैं. एक तो ये कि जो लेटर लिख रहे हैं उनको इस चीज की फिक्र नहीं है कि इसको कितना पब्लिक किया जाता है या नहीं किया जाता. क्या वो चाहते ही हैं कि ये पब्लिक हो और पता चले कि पाकिस्तान को इस तरीके से भी प्रेशराइज किया जाता जा सकता है. तो बात करते उन्होंने लेटर आया वो कर देते इसको पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, बताने के लिए हमारे लोगों को. जहां तक देखिए लेटर का ताल्लुक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि लेटर ही आया था, लेकिन मेरा ख्याल है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस नहीं किया गया था ये, और ये लिखवाया गया था और मेरे ख्याल फॉरन मिनिस्टर साहब को लेटर मिला है ये. और दिस वाज अराउंड द टाइम जब ये 7 मार्च को मेरे ख्याल है ये रिसीव हुआ है पाकिस्तान में. और ये उस लेटर में जो चीजें चलने जो सामने आई है अभी तक प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बात की थी कि इसमें एक खास तरीके से एक थ्रेट दिया गया था और साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात की गई थी कि पाकिस्तान परमेश्वर खिलाफ ही आ सकती है ये. और ये चीज कोई छंबे वाली बात नहीं है. आप अभी बाइडन की बात करें, इससे पहले जैसे ये यूक्रेन पे रूस का जो स्पेशल ऑपरेशन लिटी ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उनके सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम में मेरा ख्याल नाम उनका शायद, उन्होंने तो बड़े वाजे कहा था कि भाई हमें असेसेंस को लॉन्च करना चाहिए ताकि ब्रिटेन को खत्म किया जा सके. ये कोई अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें कोई नई चीज नहीं है.
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. मैं बल्कि यहाँ पे आप
पर पे
जी सर आपकी आवाज कट गई थी, आप कैरी ऑन कीजिए सर.
जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये रजीम चेंज के जहां तक ताल्लुक है ये कोई उनके लिए नई चीज नहीं है. जब वो देखते हैं कि अपना इंटरेस्ट उनका खतरे में है तो रजीम चेंज करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं. वो आप देख लिए इराक में क्या हुआ, जब सदाम ने कहा कि हम यूरो में ट्रेड करेंगे अभी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे ऑयल का, तो सदाम है टुको. फिर जब कजाफी साहब ने कहा जी हम ऑयल का जो है वो गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग होगी हमारी, कजाफी है टुको. सीरिया अपना इजिप्ट में आप देखिए ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है टुको और सीसी साहब वाज इंस्टॉल्ड. इसी तरीके से अल्जीरिया में फ्रांस का ये कारनामा है कि वहां पे राइट विंग हुकूमत इलेक्ट हो गई थी जो इस्लामिक पार्टी थी उनकी, उनको हुकूमत नहीं लेने दी गई, उनको हटा दिया गया उनको दस से. तो ये तो है जो चाहे वो करते रहते हैं. ईरान में किस अरसे कितने अरसे से लगे हुए हैं वो, उससे पहले मुसद्दक साहब की हुकूमत को उन्होंने चेंज किया और शाह ईरान को लेके आ गए अमेरिकन जो थे वहां पे. तो ये तो उनका एक तरीकाकार है, इसमें हमें कोई छमे वाली बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. तो इसलिए अगर पाकिस्तान में वो जीम चेंज करने का उनका इरादा था या है तो वो इसमें इसमें कोई शर्म नहीं रखते वो लोग. इसलिए भी देखिए पाकिस्तान को स्टेबल हो जाने देना, अफगानिस्तान को स्टेबल हो जाने देना, और जब भी स्टेबल हो जाएं और ये अपने तरक्की की तरफ चल पड़े और पाकिस्तान जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में एक पिवोटल पोजीशन में है और ये बाकायदा जो कनेक्टिविटी है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाए, तो इस खत्ते में तो जो इकोनॉमिक पावर है, जो बैलेंस है इकोनॉमिक पावर का, वो तो टोटली इसमें शिफ्ट हो जाएगा और ये जो स्ट्रेंथ है वेस्टर्न वर्ल्ड की वो खत्म हो जाएगी इससे। और वही इस चीज से वो खौफजदा भी हैं, जिसके लिए वो चीज।
इंटरनेट की इंटरप्शन हमें आ रही है, मैं इंटरनेट का मसला हमें आ रहा है।
इस्लामिक मुल्क है
जी सर,
पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, दुनिया के उस खिते में वाकई है जो इंतहाई अहम है, फिर ये एक न्यूक्लियर पावर है और वेरी क्रेडिबल इनका जो डिलीवरी सिस्टम है पाकिस्तान का, ये स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह एंड इफेक्टिव आर्म फोर्सेस, तो इसलिए पाकिस्तान को कमजोर करना या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। इसमें हमें कोई वो अचंभा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसी को रियलाइज करके अपने जो पॉलिसीज हैं उसको उसी से हमें तरतीब देना पड़ेगा कि हम जो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहां पे हमारे लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, सर प्राइम मिनिस्टर ने जिसने बात की थी, कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता, उनसे बचने के लिए हमें बड़ा बाजे अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। सर आज अदम एतमाद की तहरीक भी पेश हो गई, मगर उससे पहले पंजाब में बुज़दार साहब को हटाने के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा गैप था ये वाला, वो ख्वाहिश तो पूरी कर दी गई। तो व्हाट डू यू थिंक, हालांकि ख्याल ये था कि शायद अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसॉल्व करने के बाद कह देंगे कि जी मैं नया इलेक्शन करवाता हूं, तो क्यों नहीं ये किया जा रहा? तो व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू सी दिस सिचुएशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज?
देखिए जी, 31 को शुरू हो जाएगा इसके ऊपर भी, विद इन 7 डेज आज पेश होगी, 7 डेज इट हैज टू बी डन। मेरा अपना अंदाजा शुरू से ये था कि अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल प्रिवेल और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पास नहीं होगा। इसमें अगर पेश हो गया, अल्टीमेटली पेश तो हो गया है, इसमें वोटिंग की एक तो ये भी बात चल रही है कि शायद दौबत ही ना आए, और कुछ जो इस वक्त अपोजिशन में एमएलए बैठे हुए हैं शायद वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि उनको भी इसका साथ नहीं देना चाहिए, जो वजह भी उनकी है इस फैसले पे आने की। लेकिन काफी स्ट्रांग इस वक्त ये अंडर करंट्स हैं कि गवर्नमेंट विल प्रिवेल और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव कर जाएगी, और सर्वाइव करने के बाद ये चलता रहेगा और होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर इलेक्शंस माइट बी अनाउंस्ड, और नेक्स्ट ईयर अर्ली नेक्स्ट ईयर में खाले इलेक्शन भी हो जाएंगे पाकिस्तान में
इंशाल्लाह। और जाहिर है अगर इलेक्शन ही एक मसला है तो इलेक्शन अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और यकीनन प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी खुले दिल का सबूत देना चाहिए। सर हम हर चीज को मुतनाज़े बना देते हैं, अगर इवन कोई इस्लामिक महीना ही जरा इम्पोर्टेंस का इख्तियार कर लेता है ना तो हम उसको भी कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं। जाहिर है यहाँ जब मैं नंबर ऑफ पीपल देखती हूँ तो तहद निगाह लोग ही लोग नजर आते हैं, मगर जाहिर है इस ग्राउंड की एक खास कैपेसिटी है, मगर जो लोग अंदर दाखिल हो सके, नहीं दाखिल हो सके, दूर तक लोग ही लोग नजर आते हैं। और इसमें अभी वो माजिद जमाल साहब बल्कि लगे मुझसे बात करने, वो जी इस्लाम झूठ बोलने की इजाजत देता। मैंने कहा झूठ बोलने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं देता, मगर मुसलमान ही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, माजरत के साथ, ठीक है, हर रिलीजन ही बुरा काम करने से रोकता है, ये हमारा आखिर हो जाता है। तो ये क्यों इतनी मुबालगा आ रही, यानी कंट्री इम्पोर्टेंट होने की बजाय हमारे अशखास इम्पोर्टेंट है, इसको हर चीज को हम मुतनाज़े बना देते हैं कि 28,000 से लेकर 10,00,000 तक लोगों का जो है ना वो कहा जा रहा है। तो आप क्या फरमाएंगे, आपकी आंखों ने क्या देखा या क्या आपको आर्मी से पता चला?
एक तो जो परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड इज 3 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, इसको फिल करना ही काफी एक मानी रखता है। और जो दोस्त वहां पे मौजूद थे और जिन्होंने बाद में भी देखा कि अभी तक लोग बाकायदा 2-2 घंटे बाहर इंतजार कर रहे थे, उनको जगह नहीं मिली थी आने की, टाइम नहीं मिला था, बल्कि लोगों ने बाकायदा रिक्वेस्ट भी की कि प्राइम मिनिस्टर अपना एड्रेस थोड़ा डिले कर दें, लेकिन लेट हो रहा था। तो ये चारों तरफ से जो पिंडी को या इस्लामाबाद को आने वाले रस्ते थे ऑल चोक्ड यस्टरडे, तो दैट वॉज द काइंड ऑफ। तो फिर जो एनर्जी थी क्राउड की جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر کو ریسپونڈ کر رہے تھے اور جس طریقے سے لوگوں کا وہاں پہ جو انٹرویوز ہو رہے تھے, بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, کچھ بےچارے جو مزدور تھے, ویل چیئر پہ تھے, بوڑھے تھے, بچے تھے. اٹ واز اے ویری 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 اسٹرانگ کراؤڈ آئی وڈ سے. اور پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج کراؤڈ کو دیکھ کے تھی, آلسو انڈیکیٹڈ کہ ہاؤ چارجڈ ہی ہمسیلف واز. مطلب ہی اسپوک فار اباؤٹ 100 منٹس, اور جس طریقے سے اس کے بعد کا جو ریئیکشن تھا سارا, تو میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھی جا رہی ہے, پھر شخصیت پرستی ہمارے ہاں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس کے بیونڈ یا اس سے شارٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ایک شخصیت ہے یا دوسری شخصیت ہے اور ساری سوچ ہماری اس شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہے. چاہے اس کو ہم اگر کوئی عمران صاحب کو اچھا سمجھ رہا ہے تو خان صاحب کو اچھا ہی ہے ان کے لیے, کوئی میاں صاحب کو اچھا سمجھ رہا ہے تو ان کے لیے ہے. وہ یہ کم انسان کے درجے سے بلند کر کے ان کو لے جاتے ہیں اس میں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہم ان کو بلند لے کے جاتے ہوتے ہیں پھر دھرام سے نیچے گرتے بھی ہیں. کوئی انسان تو انسان ہے, انسان تمام خوبیوں خامیوں کے ساتھ انسان ہے. ہر ایک انسان میں کوئی انسان پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید پرفیکٹ تو انسان کوئی بھی نہیں بنا اس کے بعد. تو ہر انسان میں خامیاں ہیں, ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں. تو ہم اگر ان کو بحثیت انسان پلیٹ فارم پہ ہم اگر ان کو رکھیں تو ان لیڈرز کے لیے بھی اچھا ہے اور عوام کے لیے بھی اچھا ہے, ان پارٹیز کے لیے بہت اچھا ہے. پھر وہ ایک لیول پہ آ کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ابھی تو حالت یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں دے آر دا کنگز, وہ ان کے سامنے کسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس قدر ڈومیننٹ ہیں وہاں پہ وٹ ایور ریزنز. اسی لیے ان کے دیکھے نا فیملیز, وہ جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں یہ پارٹیز نہیں ہے, یہ کمپنیز ہیں انکارپوریٹڈ, جہاں پہ کمپنی ٹرانسفر ہوتی ہے والد کے بعد اپنی اولاد کو, اولاد کے بعد اگلی اولاد کو, تیسری جنریشن تک تو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی تک. چاہے وہ سو کال دینی جماعتیں ہیں یا جو سو کال پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو اس لیے چونکہ ہم نے شخصیت پرستی کو اس حد تک ہم نے اٹھا دیا ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, جس کا نقصان ہو رہا ہے ہماری پالیٹکس کو, جس کی وجہ سے بہت اچھے اچھے لوگ, ویسے ہر پولیٹیکل پارٹی میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل سکتا کیونکہ شاید وہ جو شخصیت جس کو ہم نے لارجر دین لائف بنا کے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے اس کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے, یا وہ بات کی سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وہ غلطیاں بھی بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کو کوئی چیک کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی ڈفرنٹ ویوز دینے کو تیار نہیں ہے. تو نقصان تو لیڈرشپ.
سر میں آج عمران خان
کا بہت نقصان ہے.
جی عمران خان صاحب کا جلسہ تو ہوا مگر اپوزیشن کا جلسہ آن دا وے ہے. لاہور میں تو سنا اجتماع بڑا تھا, اس کے بعد پھر گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے, وہ جلسے کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پرامن پرسکون جلسہ چل رہا ہے اور کیا یہ تو نہیں کہ پاکستانی قوم اتنے برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے ڈویژن تو ہے اور میرے لیے ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے ساتھ پلے بڑے ہیں ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے چاہے وہ سیاسی وجوہات ہیں, ہماری اپنی سوچ کی لمیٹیشنز ہیں, چاہے عقائد کی بنیاد پر ہیں, چاہے لینگویج کی بنیاد پر ہیں, صوبائیت کی بنیاد پر ہیں, ہم میں ڈویژنز ہیں اور وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں, شارپ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہی وہ فریکچرز ہیں جن کا دشمن ہم سے فائدہ اٹھا کے انہی کے بیچ میں لا کے وہ ہمارے خلاف استعمال بھی کرتے ہیں اس میں. تو اب بھی یہی صورتحال ہے اور جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے, طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے. ابھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سن رہا تھا, بڑی تکلیف دہ تھی ان کی بات کہ میں میری رہنمائی میں 500,000 جید جو علماء ہیں انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ بھئی یہ حکومت جو ہے یہ منکر ہے, ان کو جانا ہوگا.
استغفار.
اور اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو ہم گھی اگر برتن سے ویسے نہیں نکلے گا تو ہم ٹیڑھی انگلی سے نکال لیں گے. مطلب کوئی طریقہ ہے, آپ سیاست میں ہیں تو سیاست کو سیاست رہنے دیجئے. آپ اپنے جو اپنے پروگرام کی بنیاد پہ دوسرے کو
ایجنڈا ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. سر کالرز بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کالرز کو لے لوں.
जी प्लीज प्लीज
जी जी सर आप अपना नाम बताइए बताइए
जी मेरा रिजवान नाम है मेरा सर मेरा छोटा छोटा क्वेश्चन है एक तो ये बहुत अच्छा हुआ है परवेज भाई साहब आए हैं पर ये नट हाउस वाली सियासत ना करे गुजरात में ना क्योंकि असं बड़िया खानदानी दुश्मनियां अपने छातियां चलिया ने दूसरा सर जरा मोहित यूसफ साहब ने जरा दौरा से कैंसल किया रशिया दौरे के बाद कंट्री वालों धमकी तो नहीं लभ्या जरा लैटर लभ्या तो दूसरा सर जे दुनिया ने पाकिस्तान ने अपने सरप्राइज दिए ना अफगानिस्तान हो गया रशिया हो गया और ही काफी जे राज छुपे ने एक अद्धा सरप्राइज सिर्फ पाकिस्तान में लभ भी सकता है उन्हें दिल पीड़ा रखना चाहिए इंशाला उन्हें आख्या हूं वो दौर नहीं रहा पट्टो वाला हूं खान साहब के पिछले पता नहीं कितने मराना नवे पैदा हो गए हैं
बहुत शुक्रिया जी सर जी सर जी जी
मामलात नु समझदा है साडे दोस्त जिहड़े तुहाडे दोस्त ने या सब जिहड़े जिन्हां दी जिम्मेदारियां ने इन्हां मामलात नु समझदे हुण पुराना वक्त भी नहीं रहा पाकिस्तान भी अलहमदुल्ला हुण डिफरेंट है पाकिस्तान दे अवाम बहुत ज्यादा अलर्ट भी ने और देखिए खान साहब का जो जो उनका जो नैरेटिव है किस तरीके से लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है उन्होंने कि हम आपका अमन में तो आपका साथ दे सकते हैं जंग में साथ नहीं देंगे और हमें अपना भी गुलाम मत समझें आप और मरने नहीं देंगे एब्सोल्युटली नॉट तो ये पाकिस्तान का बड़ा एक मजबूत सांस है पाकिस्तान की तरफ से और इसका बहरहाल आप जब आप किस्म के आप इकदाम सोचते हैं या अपनी पॉलिसी जैसी बनाते हैं तो वहां पर मुखालफत भी होती है तो फिर मुखालफत है ना फिर भाई फिर इन्हों छिंज पाएगी तो छिंज पैनी पैनी रहेगी
बहुत शुक्रिया बहुत सी कॉल्स एकदम से आई थी और आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-602-0178 आई कैन ओनली टेक कॉल्स फॉर 7 मोर मिनट्स और उसके बाद मैं खुदा हाफिज करूंगी जी अस्सलाम वालेकुम जी
सर आप ऑन एयर
हैं जी आप ऑन एयर हैं आप अपना सवाल कीजिएगा और नाम बताइए और सवाल कर लीजिए
हाँ जी मेरा नाम हरपाल है जी
हरपाल जी ज्यादा शुक्रिया
हाँ जी तो इन्होंने आप गल कर दी पाकिस्तान के देखो लैटर की पाकिस्तान के हमेशा कॉन्फ्रेंसी थ्यूरिया चल दिया ने राइट जिन्या मर्जी दे लो अज तक कद भी जनता कोई कोई ला लो भावे 99 के कारगिल वार वो बारे देखो अज तक कद नहीं पब्लिक न बताया भी की गल हुई थी इस्लामाबाद लादन फड़िया गया वो बारे नहीं अज तक बताया क्योंकि जेडे लैटर दिखाया गया ये वे भी देखो चूरी चलिया जो निकलने को ना कुछ नहीं है बाकी इन्होंने कहा कि निसार साहब ने कहा कि अभी कंपनियां ने यह राइट पोलिटिकल कंपनियां सारे जो कंपनी है देखो पाकिस्तान के एक होर है मैं कहना नहीं चाहूंगा वैसे देखो आर्मी है वह एक रेस्टोरेंट तो लैके खाद दिया फैक्ट्रिया सीरियल बिल्डिंग घर बना हर चीज के बच्चे है राइट वो भी तो एक तरह की कंपनी वागे काम करती है तुम हमेशा कहने हो भी आर्मी और पॉलिटिक्स वो नहीं करती भी ब्यूरोक्रेसी करती है
सर वो पाकिस्तान की आर्मी है ना हरपाल जी
जेड़ी काल आउंदी है देखो मैं एक मिनट सुनो
हरपाल जी पहले
जेड़ी काल आउंदी है पॉलिटिशियन नु भी किधर वोट पाउणी है वो कोई ब्यूरोक्रेसी
थैंक यू ए हरपाल जी तुहाडा सवाल ने तुहाडे रिजर्वेशंस ने तुहाडा बहुत शुक्रिया और तुसी इंडिया तो तुसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो जी जी हुण जनरल साहब तुसी जी सर आप समझ
जनरल कियानी साहब ने एक बारी पेश कर जनरल कियानी साहब ने पेशकश की थी कि सचिन जी विड्रॉ कर लिए सी
जी
ते उस वक्त दे प्राइम मिनिस्टर मान गए सी तो आदमी ने नहीं मननी थी गल उन्होंने
जी
इंडियन आर्मी दे चीफ ने जाके ते हरपाल साहब नूं शायद पता नहीं है कि इंडियन आर्मी जिहड़ी
सर आपकी आवाज कटी है मैं बिल्कुल इसको ब्रेक देके लेके आना चाहूंगी
खाम मतलब ठीक है
जी सर आप रिपीट कर दीजिए आपकी आवाज कटी थी
ठीक है
आप रिपीट कर दीजिएगा आपकी आवाज कट गई थी इंटरनेट के कनेक्शन
जी देखिए जी मैं जो आपसे कर रहा था मैं कह रहा था कि ये हमें खाम खा पाकिस्तान आर्मी के पीछे लगे रहते हैं लोग इशू ये है कि जनरल कियानी ने ऑफर किया था कि सेशन से विड्रॉ कर लेते हैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मान गए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ ने ये बात नहीं मानने दी थी तो खामखा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं करने देती फिर भारत की जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है ना जो ये आप मेट्रो वगैरह को भूल जाएंगे आप सारी वो इंडियन आर्मी चला रही है उसके बीच में
सर यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान के ना पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का बड़ा गर्क हो उन्होंने हालांकि ब्यूरोक्रेसी ने असल रूल प्ले किया वो हर मामले में आर्मी को ले आते हैं इंडियंस आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. ہماری تربیت میں کوئی فقدان ہے ضرور, آپ مانے نہ مانے, مطلب دس از مائی
اوپینین,
ہماری تربیت میں فقدان ہے. ہرپال صاحب از اے ونڈرفل پرسن, سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہرپال جی آپ نے کال کیا, اور یہ کمیونیکیشن کے گیپ نہیں ہونے چاہیے. آپ بالکل اپنا سوال جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریے گا, مگر آج آپ دیکھیے گا پاکستان میں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, بندر بانٹ پڑی ہوئی ہے. جنرل صاحب میں بلکہ آپ ہی سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج اسرائیل میں چار مختلف ممالک, جس میں یونائٹڈ عرب امارات سے ہیں, بحرین ہے, مراکش ہے, ایجپٹ ہے, انڈیا ہے, دے آر ٹاک, اور مہمان ہیں وہ اسرائیل کے, اور اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ اپنے وہ جتنے عرب کنٹریز ہیں وہاں تعلق پیدا کرے. تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ بلیس یو دس دس بزنس, ویئر ایز ان پاکستان کے پولیٹیشنس میں وہ انڈیا کے ایک آرمی کے لیفٹیننٹ ہیں یا پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے, میں بھی ان کا نکالتی ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بس برائب کرتے جاؤ اور مطلب مولویوں سے جو مرضی کام کرا لو. لیٹ می ٹیک آؤٹ دیٹ کلپ اینڈ آئی ول پلے.
تو برائے کی بات کر رہے ہیں, وہ لگا رہتا ہے بات کرنے سے
نہیں سر, میں ابھی
وہ تو
جی
جی
جی جی آپ
انڈین پولیٹیشن کو بھی برائب کر سکتے ہیں, ہوتے ہیں انڈین پولیٹیشن بھی برائب ہوتے ہیں, ان کے سب برائب ہوتے ہیں سارے, اس میں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے بڑا کلیئر سٹانس ہے اور پاکستان اس سٹانس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر سے بڑا کلیئرلی پوچھا گیا تھا پاکستان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب اگر کچھ ملکوں نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہیں تو پاکستان جب تک اپنا سٹانس, کیونکہ اسٹانس سے جڑی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو سوچنی پڑتی ہیں اس میں,
صحیح,
تو اس لیے پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یس, پاکستان وانٹس ٹو ڈو بزنس, پاکستان از ڈوئنگ بزنس الحمدللہ. پاکستان از, شروع میں ہمیں یہ کمزوری تھی, انڈیا کو ایڈوانٹیج تھا کہ انڈیا میں بزنس مین تھے, پاکستان میں بزنس مین نہیں تھے ہمارے یہاں پہ. ہمارے یہاں بزنس لوگوں کو کرنا ابھی تھوڑا شروع ہوا ہے, اور پری پارٹیشن دیکھیے نا, ٹاٹاز وغیرہ برلاز وغیرہ وہاں موجود تھے, پاکستان میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان میں تو, پاکستان میں تو آج آ کے میں خود دو یا چار فیکٹریاں تھیں ٹوٹل جو پاکستان جو بازے وجود میں آیا ہے.
سر پاکستان کے پاس تھا کیا جب پارٹیشن ہوئی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے, جناب گاندھی صاحب کا ہی ٹک اے سٹینڈ کہ پاکستان کو جب نہیں تھا, میرے پاس وہ پورے کے پورے سٹیٹسٹکس ہیں, میں شیئر کر دوں گی کل ان شاء اللہ شیئر کروں گی. تو پاکستان کو وہ تو جو ایکچوئل حصے ملنے تھے وہ بھی نہیں تھے دیے, پھر گاندھی جی نے سٹینڈ لیا تھا. کالرز ہمارے ساتھ ہیں, کوئک سوال کیجئے گا کیونکہ میں صرف تین چار کالز لے سکوں گی. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم جی, میں بشارت علی بول رہا ہوں, میں جنرل صاحب کو اور آپ کو السلام علیکم جی.
جی
وعلیکم السلام.
میرا صرف جنرل صاحب میرا صرف ایک کمنٹ ہے کہ اب دیکھیں پاکستان میں جو ہے پارٹیاں جو ہیں مطلب پانچ پانچ چھ سے سیٹیں ہیں ان کے پاس, کوئی وزارت اعلیٰ مانگ رہا ہے, کوئی گورنرشپ مانگ رہا ہے. مجھے بتائیں یہ خود غرضی کب تک پاکستان میں رہے گی؟ جب تک یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو تب تک یہ ایسا ہی رہے گا. دوسرا یہ کہ تب تک تو یہ تھریٹ جو ہے ملتا ہی رہے گا لیڈروں کو, ہمارے پرائم منسٹر کو یا کسی کو بھی, جب تک پاکستان میں عوام جو ہے یونٹی نہیں پیدا کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ مجھے تو یہ دیکھ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے.
دیکھیے پاکستان میں جو سسٹم آف گورننس ہے نا, اس کو بھی ایوالو ہونے میں ٹائم لگے گا. جو جس قسم کی ڈیموکریسی ہمارے یہاں ہے, جس کو پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں اور کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے ہماری, تو یہ اس کے بہت سیریس ڈرا بیکس ہیں, ان کو دور کرنا بھی انہیں کا کام ہے. اور پاکستان میں بڑی اسٹرانگلی یہ بھی بات چل رہی ہے, حالانکہ زیادہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے, کہ شاید یہ جو سسٹم آف ڈیموکریسی ہے اس کو ہی چینج کرنا پڑے پاکستان میں. ہیو ٹو گو فار پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, جہاں پہ دی ہیڈ آف جو دی الیکٹڈ جو بھی ہیڈ ہوں گے, پریزیڈنٹ ہوں گے, ان کو زیادہ فریڈم آف ایکشن ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, تو اس طریقے سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے, اب اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ یا تو ہم سیاستدان ایسے لے کے آئیں, جو پریزیڈنٹ لارڈ آف سیاستدان ہے, یہ جو آگے نئے جو بھی آ رہے ہیں ان کی بھی سوچ ایسی ہی ہے. تو دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے. امید تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ابھی سارے کو سسٹم کو دیکھ کے یہاں تک پہنچے, ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان بہتر ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے بیٹھیں, اور اس کو دور کرنے کے لیے جو بھی خرابیاں ہیں ان کو دور کریں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جگہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں جہاں پہ ان خرابیوں کا سر سے وجود ہی نہ ہو اس میں.
بہت شکریہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. میرا نام خالد میر ہے.
جی سر.
जी जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये ब्राह्मोस मिसाइल वाला जो वाकया हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान ने जो अभी स्टांस लिया है, क्या अगर यही चीज पाकिस्तान करता तो क्या इंडिया भी इस तरह स्टांस लेता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान को क्या वाइस प्रेसिडेंट क्या करना चाहिए? मेरा ये सवाल।
बहुत शुक्रिया। मतलब क्या कमाल कर दिया कि ब्राह्मोस मिसाइल दाग के कहते हैं गलती हो गई और पाकिस्तान का जो एटॉमिक निज़ाम है वो सर कितनी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं वो तालिबान और दहशत गर्दों के हाथ में है, तो वहां से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया उस पे, इट इज जस्ट आई एम सॉरी।
देखिए ये पहला ब्लंडर नहीं हुआ इंडिया से। इंडिया में अभी रिसेंटली आप देखा तीन बहुत बड़ी बड़ी वो जो उनकी स्मगलिंग बिल्ड्स थी वो पकड़ी गई हैं, उसमें पता नहीं कितने इस रिंग से निकल गए हैं जो यूरेनियम स्मगल हो रहा था। इनकी सात कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं जो बाकायदा दाइश को सपोर्ट कर रही थी उसमें, तो ये तो। और जो इंडिया से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाते, इंडिया ने कोई फैक्ट ऑफ की ग्रेड इसमें लेकर आने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी सबसे ज्यादा इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, उसको बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मगरबी दुनिया के रहमो करम पे रख दिया हुआ है, उनकी सारी बात मानने को तैयार हुआ हुआ है। लेकिन इशू यह है, देखिए ब्राह्मोस वाला जो वाकया हुआ है पाकिस्तान उससे मैं इस बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता सकता यहां पे, लेकिन पाकिस्तान सोया हुआ नहीं था इसके लिए। पाकिस्तान रिएक्ट करता तो बहुत ज्यादा मसला बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बाकायदा ऑब्जर्व भी कर रहा था, देख भी रहे थे पाकिस्तान, और ये बाकायदा एक शरारत थी। इंडिया वॉज ट्राइंग टू टेस्ट पाकिस्तान रिस्पॉन्सेज, पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको देखने की कोशिश कर रहा था, और ये कोई गलती नहीं उनसे हुई थी। मिसाइल गलती से लॉन्च ऐसे नहीं हो जाते, खासतौर पर ब्राह्मोस टाइप जो मिसाइल हैं इतनी आसानी से गलती से लॉन्च नहीं होते, फिर इनकी अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है, अगर ये गलत हो जाए तो मिसाइल खुद अपने आप को तबाह भी कर लेता है, और अगर ना अगर रस्ते में पता चल जाए कि ये गलत जगह जा रहा है उसको भी तबाह करने का सिस्टम होता है इसमें। तो ये इन्होंने शरारत की थी इसमें, ऐसे ही बातचीत करें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हुआ इसको पाकिस्तान ऑब्जर्व भी कर रहा था, देख भी रहा था, पाकिस्तान की तैयारी भी थी, और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये रीजन भी बच गया और दुनिया भी बच गई इससे।
बहुत शुक्रिया। अगली कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम जी। जनरल साहब, अपने पाकिस्तान की आवाम हर मैदान में पाकिस्तान के साथ ये खड़े हैं, बरूने मुल्क में, अंदरूने मुल्क में। अब इंडिया जो झूठे दावे सर्जिकल स्ट्राइक के किए, अभी मिसाइल जो कह रहे हैं कि गलती से, वो सर्जिकल स्ट्राइक का भी कहते फिरते थे कि गलती से हुआ है। अजमल कसाब जो उन्हीं का अपना बंदा था वो भी उनकी अपनी गलती थी। अब इनका दावा ये है कि पाकिस्तानी अभी क्रिकेट का कोई मैच आ लेना तो पाकिस्तानी अवाम इन्हें बताएगी कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह खड़े हैं। आखिरी मेरा ये सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो दवाई लेने के लिए, इलाज के लिए पाकिस्तान को छोड़कर इंग्लैंड में आए, और पाकिस्तान का पाकिस्तान में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट वहां पे है, लेकिन उन्होंने एक क्यों ये अल्फाज एक बोले कि मेरा उनसे मुकाबला है जो खान साहब को लेकर आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने वोट दी है तभी वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे आए हैं। अब सवाल ये है कि सर ने ये प्लेइंग गेम क्यों की, ये सर्जिकल स्ट्राइक की ऐसी अटैक क्यों हुए कि उनको करने पड़े, वो उसके पीछे क्या है, क्या मसला है, जो हम प्राइम मिनिस्टर भी एक लेटर लेकर खड़े थे कि वो हमें एक थ्रेटिंग है, इसके बारे में आप एक बता दें।
सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बताइए।
देखिए तो नवाशी साहब, बदकिस्मती है कि हमारी सियासत में जो ग्रेसफुली हार जाना है ना वो हमारी सियासत की किताब में है नहीं।
बड़ी
जो भी हार जाता है वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि मेरी गलत पॉलिसीज थी या मैंने गलत काम किया था इसलिए मुझे वोट नहीं मिले, दूसरा मुझसे ज्यादा वोट ले गया, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं पड़ा। तो इसलिए अगर नवाशी साहब ये बात करते हैं तो मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं होती इसमें, क्योंकि ब्लेम तो उन्हें किसी को करना है, अपनी खुद तो उन्होंने गलती माननी नहीं है इसमें। बाकी जहां तक ताल्लुक है, देखिए जी भारत ने एक दफा नहीं कई दफा कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हर दफा उनको नाकामी उठानी पड़ी है। अजमल कसाब वाले वाकये में भी अभी मैं क्या बात करूं, उसमें भी हमारे घर के भेदी उन्होंने लंका ढाई कि भाई वो अजमल कसाब के जो दो गांव ढूंढे वो बदकिस्मती से मेरे गांव के गांव है।
तो
ये है कि
पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां बैठा हुआ था।
अच्छा, इशू ये है कि हमारे यहां कसाब नाम की कोई कौम नहीं है, कोई कौम है ही नहीं कसाब नाम की। तो हमारे यहां चाहे वो मीडिया थे वो ढूंढ निकल लेके ले आए, फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे बाद में नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी बयान दे दिया बीच में, और उन्होंने एक दफा नहीं दो तीन दफा ये बात की ऐसे कि हमें क्या जरूरत थी इतने जाके करने की। हालांकि ये अंधे को नजर आ रहा था, हम जैसे जो प्रोफेशनल हैं इस गेम में, ये अंधे को नजर आ रहा था, रात उस तक जाग रहा था मैं कि ये इज ए वेरी क्लियर कट क्या कहते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये, क्योंकि इंडिया को अभी भी कह रहे थे 10 जगह पे बंबई में हल्ला हो रहा है, 10 बंदे 10 जगह पे कैसे हमला कर सकते हैं। अच्छा, जो 10 बंदे थे उनमें से 9 का किसी की बॉडी भी नहीं दिखाई उन्होंने। जो 10वां बंदा अजमल कसाब जो था, वो आपको अगर आप देखिए उसके जो वीडियो क्लिप्स आई है उसमें, तो यूं फिर जैसे इंडियन फिल्म में हीरो फिर रहे होते हैं, उनके कोई इसको डर नहीं खौफ नहीं, इस किस्म के लोग ऐसे काम करते हैं फिर। और उनके जो सामान निकला उसमें से हर चीज में मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था,
हालांकि
सारा मतलब वो जहलों की तरह उन्होंने काम किया, पाकिस्तान की सर मुंड दिया, पाकिस्तान के लोग भी, उस वक्त की हुकूमत भी और बाद में जो हमारी हुकूमतें आई उन्होंने भी फौरन इसको मान के हम खड़े हो गए। लेकिन पाकिस्तान इस काम में इतना जाहिल नहीं है
सर। वो मतलब खबरों को बनाना अगेन, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम में एक उन्होंने छाप दिया था, एक न्यूयॉर्क टाइम ही उन्होंने छाप दिया, उसमें दो गलतियां हो गई थी बड़ी बड़ी, बिकॉज सू हो सकते थे, और उसमें लिखा था द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर इज नरेंद्र मोदी, आई हैव दैट स्टिल विद मी, और वो न्यूयॉर्क टाइम, और मगर उसमें एक तो डेट की उन्होंने गलती कर दी थी, एक स्पेलिंग की गलती कर दी थी, और ये इंटरनेट के ऊपर रही भी बड़ी, बट दे आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल। अनफॉर्चुनेटली हम डिवाइडेड लोग हैं। अगली कॉल, एंड आई बिलीव दिस विल बी, तीन कॉल्स हैं, मैं इसके बाद इन तीन को अगर मैं एड्रेस कर दूं तो यही बड़ी बात होगी, बिकॉज वी आर आउट ऑफ आवर टाइम। मैंने एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना है, वही जो लेटर दिखाया गया, और ये भुट्टो साहब के बारे में जो लेटर आया था, इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई हैव दोज स्टेटमेंट्स विद मी, जिसमें पहली स्टेटमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये उस वक्त के जो थे आपके अमेरिकन काउंसलेट के एक डिप्टी चीफ थे, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने बताया था ये 10 अप्रैल 2000, मैं नाम दे देती हूँ 76, चीफ मिशन अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी चीफ मिशन जेरल्ड फॉरेस्टन ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया था, उन्हीं का आवाज में, कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से, प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से भुट्टो साहब और हेनरी किसिंजर के दरमियान में मौजूद थे, वो इस मीटिंग के ऐनी शाहिद हैं, जिसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद फिर जाहिर है जेरल्ड फ्यूरिस्टन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त अमेरिका में इंतखाबात करीब थे और डेमोक्रेट्स के जितने भी ज्यादा इम्कान थे एटमी अदम फैलाव की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराना चाहते थे, पाकिस्तान को एक मिसाल बनाना चाहते थे, भुट्टो के एटमी प्रोग्राम तर्क करने की सूरत में उसे A7 अटैक बम्बार तैयारे देने की पेशकश भी की थी, और ये कोई मैं और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बंदे के नाम के साथ। अपने इंटरव्यू में जेरल्ड फ्यूरिस्टन ने भुट्टो को अपनी कमजोरियों के बावजूद पाकिस्तान का सबसे बासलाहियत, जहीन और काबिल सियासतदान करार दिया था, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड लॉ, थर्ड लास्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम जी,
आपका सवाल और जनरल साहब का जवाब। बुखारी साहब फौज के साथ काम कर चुके हैं जी, सर आप सवाल कीजिए।
जी सर, जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम
जी, मेरा बड़ा 52 PM है, तो मेरा जनरल साहब एक छोटा सा बड़ा सीरियस कंसर्न है, वो ये है कि मैं एक छोटा सा डिफेंस एनालिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एनालिसिस करता रहता हूँ। मेरा कंसर्न है 71 वॉर, क्योंकि हमारे जितने भी जनरल्स हैं, जो भी एनालिस्ट आते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर इंडिया का एक प्रोविंस टूवर्ड्स हमारे वेस्ट होता है, टूवर्ड्स ईरान और अफगानिस्तान, और वो उसको सर्वाइव करता है फॉर 21 ईयर्स विद ऑल द ऑपोजिशन, और जबकि हमारे सारे रिसोर्सेज बंद कर दिए गए थे एंड वी वर थाउजेंड माइल्स अवे फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। सो व्हाई डजंट आवर एनालिस्ट, वो ये क्यों नहीं पॉइंट लाते टूवर्ड्स आवर एनालिसिस के ऊपर सोशल मीडिया पे कि इंडिया का अगर एक प्रोविंस होता है टूवर्ड्स वेस्ट तो उसका क्या, क्योंकि वो एक स्टिग्मा हम पे लगाते हैं 71 वॉल्स, जबकि हम कहते हैं कि जेट वॉज आउट ऑफ आवर रीच बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टॉप। सो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा अपना जरा कॉमेंट दीजिए।
देखिए गुड टू कनेक्ट विद अ यंग यंगर सोल्जर। बात यह क्या वॉज देयर इन 71।
मुझे शुक्र है कि आपकी ज्यादा लंबी बात नहीं हुई, वरना ही इज वन ऑफ दोज जिसने आपको कहना था कि कुछ करके आरफा को उड़वा दें।
क्यों भाई,
ही इज वन ऑफ दोज।
नहीं नहीं, मेरी बहन को कुछ नहीं कह सकता भाई,
ऐसी कोई बात,
छोटी बहन को मेरे को कुछ नहीं।
जी सर,
तो एक तो ये था कि जो स्ट्रेंथ के बारे में हमारे अपने लोगों ने इंडियन परसेप्शन को ज्यादा उसमें ऐड किया, वी आर जस्ट अराउंड आई थिंक 32,000 ज्यादा हम थे नहीं वहां पे। इसमें से भी आप समझ सकते हैं कि इफ यू टेक आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट तो फाइटिंग ट्रूप्स वर हार्डली 17,000-18,000। डिस्टेंस डेफिनेटली वाज एन इशू, और वो हम जैसे लोग जो वहां पे थे हमने तो कई बार इस चीज का इरादा किया, लेकिन इशू ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर लिखा कम है, हम लोगों ने इसके ऊपर बात कम की है, और जिसकी वजह से और जो एक इंडियन प्रोपेगेंडा था या दूसरों का था वो ज्यादा उसको हवा मिली। और यहां हमारे यहां उसको उस वक्त भी जो बातचीत हो रही थी या जिन लोगों ने कोशिश की लिखने की उनको बड़ी सख्ती से दबाव भी दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन भी थे वहां पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट। लेकिन इशू यह है कि ये उस वक्त बात ज्यादा खुलना शुरू हुई जब ये वो शर्मिला बोस ने लिखना शुरू किया, जब उसने मुझसे इंटरव्यू वगैरह लेकर लिखना शुरू किया तब हमारे लोग भी खुलना शुरू। अब तो बंगाली भी अखबार खुल के आ गए हैं सामने कि ये पाकिस्तान फौज का इतना ज्यादा जो इल्जाम लगाते नहीं थी, बट आई एग्री विद यू दैट वी नीड टू डू मोर अबाउट इट, ताकि हमारे ऊपर जो स्टिग्मा है वो डेफिनेटली एक स्टिग्मा तो है हमारे ऊपर सरेंडरिंग जो भी हम बात करते, लेकिन जो जिस किस्म की जंग वहां पर हुई है उसके लिए मानिक शाह का ही बता देना काफी है कि पाकिस्तान हैड नो चांस। 50-1 सुपीरियरिटी थी, मतलब एवरी वन सोल्जर दैट वी कुड फील्ड इंडिया एट 50। और इसमें जो सुगत की मुक्ति बानी है जो बंगाली वो जो थे उनको अगर शामिल कर ले तो रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल इंडियन ऑल्सो नो दैट, तो एनी वे बट आई एग्री विद योर पॉइंट जी, थैंक यू,
शुक्रिया। सेकेंड लास्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो
हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आरफा भाजी क्या हाल है, ठीक ठाक?
आप सवाल कीजिए, जनरल साहब आपके साथ हैं।
जी जी, जनरल साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारी आर्मी है ये तो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के लिए कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर हमारे आईएसआई या आर्मी को ये ऑलरेडी मालूमात है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है ये अगेंस्ट पाकिस्तान है, या मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या इन लोगों ने इतना करप्शन किया है और ये करप्ट है, तो फिर इनको किस तरह ये लोग इजाजत देते हैं कि ये पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में बैठ के फिर हम आवाम लोग आवाम के साथ ये जो है ना ये खेल खेलता रहे, क्यों इनको मना नहीं करते, क्यों इनको जो है ना नहीं रोकते, मतलब अगर इस तरह है तो।
सही सर, बहुत शुक्रिया आपका सवाल लिया। मैं भी आपके आपके इसी सवाल पे बेस करते हुए गिला करके प्रोग्राम खत्म करूंगी। जी जनरल साहब,
देखिए इशू यह है कि पाकिस्तान आर्मी का और इंटेलिजेंस का ये काम नहीं है, काम तो है हमारी सिविल गवर्नमेंट का, सिविल इदारों का, और इसमें बहुत सारे इदारे हैं इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन आपकी बात सही है, इस किस्म के जो भी लोग हैं उनको जब तक कानूनी तरीके से उनको डील नहीं किया जाएगा और बड़े वाजे और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको खुला दुनिया के सामने डील नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा, और पाकिस्तान के नुकसान से बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी वजह से पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंच रहा है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए।
बहुत शुक्रिया सर, मेरा लास्ट कॉल है। माजी जमाल बेईमानी करने में सबसे माहिर है।
सेकंड लास्ट कॉल,
लास्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम
सलाम,
बात कर रहा हूँ। और जनरल साहब से सवाल ये करना था कि जब हमें सारी चीजों को पता होता है और हमारी आर्मी नो डाउट की बड़ी प्रोफेशनल है और दुनिया में काफी अच्छे रैंक पे है, तो जब इंडिया के हवाले से दो तीन वाकयात हुए, जैसे हमने उसको चाय पिला के भिजवाया या जो भी हम वो करते, तो हम बड़ा डिफेंसिव होके काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में सही नहीं है। अगर रिएक्ट हमें जरा सा अच्छा करना चाहिए, जैसे जो भी अटैक हुआ या जो भी हुआ उसके ऊपर प्रॉम्प्ट अगर हम अटैक करें, ना कि वो मिसाइल आता है हम देखते हैं फिर दूसरे दिन हम बताते हैं कि ऐसा हुआ है, फिर वो उनकी एक्सप्लेनेशन आती है और वो एक्सक्यूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हम जब इतने प्रोफेशनल हैं तो हमारे जो है वो इंटेलिजेंस वाले या हमारी आर्मी को ऐसा उसके ऊपर प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना चाहिए ताकि इंडिया को एक मैसेज मिल जाए, वरना वो पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को बड़ा डिफेंड कर लेते हैं और हम कह देते हैं हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो क्या ख्याल आपका इसका?
हमारा ब्रेन वॉश जल्दी हो जाता है। जी जी जनरल साहब,
देखिए बात यह है, मेरी पर्सनल ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, लेकिन स्टेट पॉलिसीज है, मैं उनके स्टेट की अपनी कोई लिमिटेशन भी हैं, कोई प्रॉब्लम भी हैं, और मेरा अपना जाती जो रवैया है या कह लीजिए जो है वो जो ये दोस्त हमारे बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये जरूर है कि हमें अपने हाथ बांध के हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, डिफेंसिव रह के पाकिस्तान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप जब तक डिफेंस में रहेंगे आपको लोग मारते रहेंगे, जब तक तो आपके मुखालिफ को या दुश्मन को यह पता नहीं होगा कि आप रिएक्ट करेंगे और आपका जो रिएक्शन आएगा उससे सख्त होगा जो दुश्मन ने किया है, दुश्मन बाज नहीं आएगा उससे।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पुतिन साहब को भी पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बाइडेन साहब को दुनिया भर ने कहा कि आप रिएक्ट करें मगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया।
ये गलती कर ली ना तीन दिन से व्हाइट हाउस,
मगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। दुनिया की पूरी दुनिया की बात नहीं मानी कि आप जाएं अपने सोल्जर्स ले जाएं, आप जाएं अपने फाइटर्स ले जाएं वहां।
नहीं, मगर वो रिजीम चेंज करेंगे ना, वो रिजीम चेंज करेंगे एंड ही सेड इट। सर मेरा आपसे एक गिला है, ये सारे की सारी दुनिया का दिमाग खराब कर दिया कि जी पाकिस्तान में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि ब्यूरोक्रेसी की बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसमें कोई शक नहीं, और आर्मी में हर चीज थ्रू सिस्टमैटिक वे है, सीनियोरिटीज पे प्रमोशंस होती हैं, वेयर एज इन ब्यूरोक्रेसी आप लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं, सिफारिश है इसमें कोई शक नहीं, ठीक, मगर और ब्यूरोक्रेसी ने चलने नहीं दिया, हर चीज को क्रिपल्ड रखा। अगर आर्मी को ये कहा जाता है कि आर्मी इतना इंटरवीन करती है, तो जब नवाज इमरान खान को जिता रहे थे तो मतलब आपने 135-140-70 सीटें ले लेने देनी थी, आपने 116 के ऊपर पंगा डाल दिया, मतलब आर्मी ने ये क्यों किया?
भाई आर्मी ने थोड़ा किया कुछ, ये वोट देने वालों से पूछे।
नहीं सर, वोट देने वालों से पूछे, ये लोग सारे आर्मी आर्मी करते हैं, तो आर्मी को चाहिए था कि कम से कम उसको जिता तो इतनी वाफर
एक्सपीरियंस। आर्मी 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 के उसमें काम क्या थे, आर्मी सिवाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के या जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी उससे आर्मी का तो कोई काम नहीं और नहीं है। हमने खुद जिंदगी में बड़े से इलेक्शन करवाए हैं लेकिन कभी हमें इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी।
मेरा लास्ट सवाल आपसे जो है ना, अगर इमरान खान को चाहिए था वो इलेक्शन कर देते, ये जो इत्तेहाद है इसका मकसद ये है कि एक बंदा एक पार्टी का, यानी ऑपोजिशन तीन चार ऑपोजिशन मिलके बैठ गई है, एक वजीर आजम बन जाएगा, एक सदर बन जाएगा, एक वजीर आला बन जाएगा, दूसरे को एक जगह का वजीर आला, मीन वाइल ये अपना इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, यानी वो जो इदारा जिसने देखना है, तो ये अपनी फेवर्स के साथ बंदों को वहां लेके आए। अगर इमरान खान, बिकॉज दे विल नेवर एक्सेप्ट कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दें कि भाई ठीक है जी आज से 6 हफ्ते के बाद 8 हफ्ते के बाद हम इलेक्शन करवाते हैं, तो इसको तो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे इफ दिस सिनेरियो पॉसिबल, और अगर ये होगा तो ये तो मौत हो जाएगी सारी ऑपोजिशन की।
नहीं, मेरे नहीं ख्याल उनके पास कोई ऑप्शन रह जाएगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशन है या जो अथॉरिटीज हैं उसको तो ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले नहीं चैलेंज कर सकती। तो उसमें जहां तक इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है, जब ये जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर तो नया आ जाएगा, उसमें ऑपोजिशन मिलकर बैठ के फैसला करेंगी, और अगर नहीं पहुंचते तो वो कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाएगा, हो जाएगा, अपॉइंट हो जाएगा। तो बात यह है कि जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, नहीं जब ये इलेक्शन हुआ था तो मेरा जो पहला ट्वीट था उसको यह था कि पीटीआई शुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज ये सिस्टम जो है इमरान खान इसको नहीं चला सकेंगे।
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. جناب صاحب آخر میں آپ اپنا اوپینین دنیا کے لیے بھی دے دیں کہ یہ وار جو انٹرنیشنل ہے, بلکہ پاکستان میں مختلف لوگوں سے میری بات چیت ہوئی, نہ تو ان کو باہر کی کوئی خبر ہے کہ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے. دے آر سو کام. ابھی دنیا کا ایک سروے آیا ہے جس میں پاکستان بڑی اچھی نمبر کے اوپر ہے کہ پاکستان کے لوگ خوش مزاج, ہنس مکھ اور حشاش بشاش رہنے والے لوگ ہیں. اور پاکستان کی پالیٹکس کے لحاظ سے آپ کا کیا کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟
دیکھیے, اونٹ تو تقریباً بیٹھ ہی رہا ہے, کافی حد تک بیٹھ گیا ہوا ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ چلتی رہے گی جیسے ہے یہ, اور الیکشن میرے خیال ہے سال کے اینڈ تک اناؤنس ہو جائیں گے. اگلے سال ارلی جیسے میں نے ارج کی تھی کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور اس دفعہ الیکشن میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی شوڈ ڈو مچ بیٹر, کیونکہ عمران خان صاحب جو بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے تھے, ان کا نیریٹو پٹ رہا تھا بڑے برے طریقے سے. اب وہ نیریٹو کے ساتھ ایک ریجنریٹڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ کل کے جلسے کے بعد اور عمران خان صاحب کے نئے کانفرنس کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی از اے بیٹر چانس ناؤ. اور پچھلے بار بولڈ اوور 32% آف ووٹس جیتے ہیں وہ, ادھر مجھے خیال ہی ہے کہ دل کراس 40-45% سیٹ بھی زیادہ ہو جائے گی
تو پھر آرمی کو شاباش مل جائے گی. حالانکہ آرمی کا کیا درد,
آرمی کا کوئی قصور,
پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے پاکستانیوں کے دماغ کو, بیکاز اسی خوش رہنے والے لوگ ہاں, اور لوگ کی چھتی پرابلمس کریٹ کر دیں دے نے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, برادر آف مائنڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مرسا صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا, ونڈرفل مین, تھینک یو. جنرل لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ تھے, آپ کا سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ٹاپ آف دا آور, اینڈ آئی ول کم بیک ود دیٹ آرٹیکل.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
Boost your business's bottom line by adopting new digital strategies and technologies. Get access to expert advice and apply for up to $15,000 in grants at canada.ca/digital-adoption. A message from the Government of Canada.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نوں ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نوں کال کرو 416-655-2000.
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج,
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747171.
From helmets to sunscreen, we do everything we can to keep our kids safe. So, how can the COVID-19 vaccine help protect them? COVID-19 vaccines can help keep children safe from severe illness and potential long-term effects of the virus. Millions of children in Canada and around the world have already been safely vaccinated. Help protect your child. Book their appointment at canada.ca/covid-vaccine. A message from the Government of Canada.
بینک الفلا پیش کرتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اب بیرون ملک مقیم پاکستانی یہ اکاؤنٹ فوری ڈیجیٹلی کھلوا سکتے ہیں. ابھی www.bankalfala.com وزٹ کریں, آج ہی اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں. اس ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جب چاہیں پیسے ڈالیں اور جب چاہیں پیسے واپس لے جائیں, اور پائیں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے مواقع. یہ بینکنگ کا نیا انداز ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے. بینک الفلا, ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਨਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਰਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਨਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾਓ। ਮਾਰਕਮ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਰੋਨਾ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ।
ਲੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਚ ਵਸੇ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੌਂਡੋ ਚ ਆਪ ਰਹੋ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਫ੍ਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਲੇਕ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਬਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੀਮੈਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 647-300-8436।